कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना है, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजाए, कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे, दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहो। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म तो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सके। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दातापन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है, बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा, श्रीमत डबल लाइक बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती, तो श्रीमत पर चलना आता है ना। तो 15 नवंबर 1999 की ये मुरली है। बाबा पूछ रहे हैं कुमार क्या करेंगे, शक्तियां जमा है, स्टॉक जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जो पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजाए। तो साक्षी भी होना है, साथ साथ साक्षी और निर्भय अवस्था, परंतु साथ साथ दातापन देना भी है, और देने के लिए स्टॉक भी जमा चाहिए। देना और साक्षी रहना, सारे कर्म करते हुए साक्षी की साधना, साक्षी का भाव बना रहे। साक्षी कौन बनता है? साक्षी वह है जो देख रहा है, साक्षी कौन है? व्यक्ति नहीं, साक्षी जो देखने वाला है वो साक्षी है। एक है दृश्य, एक है दृष्टा, एक है देखने वाला, एक है जो दिखाई दे रहा है। तो जो देखने वाला है वो है साक्षी। सारी साधनाएं यहीं आके रुकती है, सारे धर्म चाहे भगवान को माने या न माने, परंतु साक्षी को लगभग सभी ने माना है। वो बुद्ध और वो महावीर जिन्होंने ईश्वर को इनकार कर दिया, उनमें भी कहीं ना कहीं साक्षी का भाव है, साक्षी की साधना है। तो साक्षी होने की जो साधना है, साक्षी दृष्टा होने की जो साधना है, अध्यात्म का मूलभूत आधार है। ये साधना सबसे महानतम साधना है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको देखना, परंतु उसमें ये भाव हमेशा रहे कि ये मैं नहीं हूं, ये केवल दृश्य है, मैं इन सब से अलग हूँ। जो अनुभव हो रहे हैं वो भी उस साक्षी जो है उसको हो रहे हैं। इसके लिए उन अनुभवों से भी वो परे है। वो अनुभव भी वो नहीं है, वो साक्षी है, वो देखने वाला है। अब जो देखने वाला है उसे कौन देखेगा? जो देखने वाला है क्या उसे देखा जा सकता है? जो देखने वाला है उसको कौन देखेगा? उसको कोई नहीं देख सकता है। हाँ, मैं दूसरे को देख सकता हूँ, पर मैं जो देख रहा हूँ और मैं जो साक्षी हूँ, जो देख रहा है उसे कौन देखेगा? स्वयं स्वयं को देखने वाला अगर बन जाए तो जो स्वयं है वो स्वयं नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो दूसरा हो गया फिर, क्योंकि वो दृश्य बन गया है। क्योंकि जिसे देखा जा रहा है वो दृश्य है, जो देख रहा है वो दृष्टा है। तो ये जो साधना है अति सूक्ष्मतम और अति गुह्यतम साधना है, स्वयं सब कुछ देखना। जैसे चिमटा है, चिमटे से सब कुछ पकड़ा जाता है। जो चिमटा है उससे पकड़ा जाता है, चिमटे को कौन पकड़ेगा? वो तो पकड़ने वाला है। जो देखने वाला है उसे कौन देखेगा? तो ये जो साधना है साक्षी दृष्टा की, हम तो हमेशा कहते हैं कि साक्षी जो भाव है वास्तव में ये परिणाम है बहुत सारी साधनाओं का, या फिर अंतिम स्थिति है या उपराम स्थिति है। अंत में आप सभी साक्षी बनेंगे, उपराम बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। जो कुछ दिख रहा है वो दृश्य अनुभव होगा, अप्रभावित रहेंगे। एक तरफ अध्यात्म की साधना का ये परिणाम है, दूसरी ओर ये भी एक अपने आप में साधना है। यही साधना कि मैं साक्षी हूँ, ये सब मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो टेबल है ये दिखाई दे रहा है, ये किताब ये दिखाई दे रही है, ये दृश्य है, ये दृश्य मैं नहीं हूँ। मैं इन सब से भिन्न हूँ। ये जो देह है ये देह भी दृश्य है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सब कुछ देखने वाला हूँ। जो देखने वाला है वो जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है। इसलिए ही जो देखने वाला है वो अप्रभावित है उन सब से जो दिखाई दे रहा है। ये साधना है, ये साधना करना है। देखते हुए भी मैं साक्षी, सुनते हुए भी मैं साक्षी, बोलते हुए भी मैं साक्षी हूं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूं। प्ले करते हुए भी मैं फिर भी साक्षी हूं। ये एक अद्भुत रहस्य है कि इस नाटक में हम कलाकार भी है, अदाकार भी है, भूमिका अदा करने वाले भी है, और साथ साथ जो ऑडियंस है वो भी हम ही है। ये साधना है ऑडियंस बनने की। प्ले करते हुए भी जैसे मैं कर ही नहीं रहा हूं, ऐसी ये सूक्ष्म साधना है। हम श्रोता है, सुनने वाला मैं हूं, देखने वाला मैं हूं, अनुभव करने वाला मैं हूं। ये साधना, ये सर्वोच्च साधना है अध्यात्म की, सबसे बड़ी साधना, कि सब कुछ मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं। उसमें फिर ये भी आ सकता है कि ये जो विचार चल रहे हैं, इन विचारों का भी मैं साक्षी हूं। विचार आ रहे, विचार जा रहे, विचारों का आना और विचारों का जाना, कितने विचार आ रहे और कितने विचार जा रहे, विचारों का कुंभ मेला लगा है, सैकड़ों विचार है आ रहे और जा रहे, परंतु मैं ये भी नहीं हूं। जो बाबा कहते हैं कि तुम राजा हो, मन बुद्धि संस्कार ये अलग है, हैं तो तीनों उसी में, फिर भी साधना के लिए उन्हें अलग बताया जा रहा है। अब अभ्यास के लिए उन्हें अलग बताया जा रहा है। दरबार लगाओ, मैं राजा हूं, ये मंत्री है, ये कारोबारी है, मैं अलग हूं। उसी तरह साधना जो है साक्षी की, वो भी ऐसी ही है, मैं साक्षी हूं, साक्षी दृष्टा हूं, आत्मा हूं। तो ये जो मन है और ये जो बुद्धि है और ये जो संस्कार है तो उसी में, तीनों ही शक्तियां उसी की है, फिर भी साधना के लिए अलग बताया जा रहा है, क्योंकि साधन संस्कार जो है वो मिक्स्ड हो गए हैं द्वापर से, इसके लिए उनसे अलग होने के लिए ये साधना बताई जा रही है कि ये संस्कार भी मैं नहीं हूं, ये विचार भी मैं नहीं हूं, ये जो इच्छाएं आ रही है ये भी मैं नहीं हूं। तो ये एक परम साधना है, सारे दिन भर में बार बार ये साधना करनी है। ये जो डिपार्टमेंट है ये भी हमारा नहीं है, ये जो व्यक्ति वहां है वो भी मैं नहीं हूं, ये कुछ भी हम नहीं है, हम साक्षी है। ये साधना क्या होगा, इस साधना से जैसे ही ये साधना करना आरंभ करती है आत्मा, वो स्वस्वरूप में स्थित होने लगती है, निज स्वरूप में स्थित होने लगती है। तो ये जो हजारों और सैकड़ों संकल्प आ रहे हैं ये स्वतः ही शांत होने लगती है, होने लगते हैं, क्योंकि ये हम नहीं है, हम इन सब से भिन्न है। रोल कॉन्शियस, प्ले कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, सॉइल कॉन्शियस, ये इनमें से हम कुछ भी नहीं है। ये ना मिट्टी हम है, ना ये देह हम है, ना ये पद हमारा, ना ये पोजीशन हमारी, इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। किसी का कोई पति है, किसी की कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ये सब हम कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, ऐसी साक्षी की साधना करनी है। तो बाबा कह रहे हैं दाता बनो, देते जाओ, उसके लिए भी कैसे दो, साक्षी होकर दो। तो ये भाव ही विलीन हो जाएगा कि हमने दिया है, और उसके लिए क्या करना है, स्टॉक जमा करना है, दो स्टॉक, एक तो शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का स्टॉक, दूसरा सर्व शक्तियों का स्टॉक। ये जितना स्टॉक जमा होगा उतना ही हम दे सकेंगे। जो संपन्न है वही दाता बन सकते हैं, जो संपन्न ही नहीं है वो दाता नहीं बन सकते। आज की मुरली संडे की, हमारे ओरिजिनल संस्कार है संपन्न बनने का, संपन्न और सफलता मूर्त। तो संपन्न अगर होंगे तो ही महादानी और वरदानी बन सकेंगे, जो संपन्न ही नहीं वो महादानी और वरदानी नहीं। ये चारों ही हमारे ओरिजिनल अनादि संस्कार है, इनके स्मृति स्वरूप। एक तरफ साक्षी की साधना, दूसरी तरफ स्वयं को संपन्न बनाने की साधना, तीसरी तरफ दे जा देते रहना। एक तरफ भर भी रहे और साथ साथ दे भी रहे। और फिर चौथी जो बात यहां पर कही है वो है साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपने पुरुष, आप अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, एक चौथी बात जो यहाँ बताई है वो है पुरुषार्थ की। अमृत वेले से ही यह सोचो, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना, यह बाप समान बनना है, बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। परंतु श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है, इनको छांटना और अलग करना ये भी एक साधना है। कैसे पता चले कि ये मनमत है, और कैसे पता चले कि ये परमत है, और कैसे पता चले कि ये श्रीमत है, यही साधना है। वास्तव में यही एकमात्र साधना है कि ये जो था ये मेरा अपना मत था, ये मनमत था, ये जो था ये किसी और का है, इस और में बहुत कुछ आ सकता है। ये जो और है इसमें व्यक्ति है, समाज है, व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर है श्रीमत, इन तीनों को ही अलग करना, ये मनमत, ये श्रीमत, ये परमत। श्रीमत परमत और मनमत भी मुखोटा किसका ओढ़ कर आती है, श्रीमत का। मनमत भी यही कहती है कि मैं श्रीमत हूँ, परमत भी यही जतलाती है, दिखाती है कि मैं श्रीमत हूँ। कैसे अलग करे तीनों को प्रभाकर भाई, कैसे समझे कि ये श्रीमत नहीं है, ये तो मन से उत्पन्न होने वाली मत है, ये तो पर की है, श्री की नहीं। इस पर सोचना। कहीं ना कहीं असंतुष्टता का भाव होगा, थोड़ा सा दिल खाएगा। अगर हल्की भी असफलता है तो समझ लेना वो श्रीमत नहीं थी, थोड़ी सी भी। यदि मन में जरा भी दुख है, उलझन है, मन में एक दुख का भाव है, ये भाव की कोई और मेरे दुख का कारण है, ये व्यवस्था मन में बनाई रखिए। वास्तव में दुख और सुख मन के ही है, अपने ही है, मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। जब तक मैं यह मान रहा हूं कि मेरे दुख का कारण कोई और है, अर्थात हम मन्मत और परमत पर है, श्रीमत पर नहीं। क्योंकि जहां श्रीमत है वहां अतीन्द्रिय सुख है। जब तक यह हीन भावना मन में है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कल हम एक किताब की चर्चा कर रहे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसके दो भाग थे। एक तो बता दिया था स्टे हंग्री, कि प्यास हो पाने की, अभिप्सा हो, उत्कंठा हो और आगे बढ़ने की, पुरुषार्थ में वो दैवी असंतुष्टता हो। दूसरा भाग है स्टे फुलिश। स्टे फुलिश का क्या अर्थ है? स्टे फुलिश का अर्थ वो नहीं है जैसे शब्द है, मूर्ख बन के रहना, ये उसका अर्थ नहीं है, उसका अर्थ कुछ और है। स्टे फुलिश अर्थात निरंकारी, वो अर्थ नहीं है स्टे फुलिश का यहाँ पर इस मुहावरे में एटलीस्ट, जो कि सबसे पहले स्टीव जॉब ने प्रयोग किया था। तो जो किताब लिखी गई है, रश्मि बंसल ने जो लिखी किताब है, जिसमें ऐसे 25 लोगों का वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पाई, तो स्टे फुलिश अर्थात ये समझना, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये जो हीनता की भावना है, इनफियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये ना होना, या फिर ये समझना कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम करके दिखाएंगे, फिर इससे उसको पराजित करना, उस भावना को, हीन भावना से मुक्ति। स्टे फुलिश का अर्थ यहां पर यह है। तो ये भावना यदि मन में है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम में ये गुण नहीं है, हम में ये अवगुण है, लोग हमें नहीं मानते, ये सारी हीनता की भावना है। एक है अहंकार, दूसरा है हीन भावना है। दोनों ही देहभान है, दोनों ही यदि है तो समझना वो भी मनमत और परमत है। वो तो मनमत है, किसने कहा? भगवान कह रहा है तुम सबसे महान हो संसार में, हम कह रहे हो हम महान नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा हीरो पार्ट है, हम कह रहे हैं मेरा कोई अच्छा पार्ट नहीं है, मुझे कोई मानता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे में सारे अवगुण भरे हैं। एक है अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, वो भी मनमत और परमत है, वो भी विकार है। तो हीन भावना भी विकार ही है। ये सोच के खुश मत होना कि ये बहुत नम्रता है, ये नम्रता नहीं है। इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स नम्रता नहीं है, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो स्वमान है ही नहीं, ये तो स्वमान से गिर जाना है। एक है स्वमान से, एक है स्वमान के विरुद्ध जो है वह अहंकार, जो देहभान है। परंतु हीन भावना तो उस अहंकार से भी नीचे की अवस्था है। अहंकारी व्यक्ति फिर भी ठीक है, परंतु हीन भावना वाला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। अहंकारी फिर भी कुछ तो करेगा, प्रगति करेगा, उसको कोई सफलता मिलेगी, अहंकार साथ चलेगा। परंतु हीन भावना वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता है, जीवन में केवल दुख और दुख ही समाया हुआ होगा। दुख से जैसी ऐसी घनिष्ठ मैत्री है कि केवल अवसर की तलाश है, कौन कुछ कहे और मैं दुख लूं, कैसे झपटू उस दुख के ऊपर और पकड़ लूं, जैसे इंतजार कर रहे थे। 100 लोग आए, उन्होंने स्तुति की, तारीफ की, महिमा की, अप्रभावित। एक ने आया और कुछ कहा कि बस पकड़ लिया उसको। लव ऑफ सॉरो, ये प्रेम है उस दुख से। इतने समय दुख में रही है आत्मा, उस दुख से ऐसा अद्भुत प्रेम हो गया है कि अब उसके बिना रह नहीं सकती। दुख के बिना, दुख ही चाहिए, और जो देगा उसको पकड़ लेना और उसी का चिंतन करते रहना, उसी चिंतन में सारा जीवन बिता देना। अटैचमेंट टू दुख, एब्जॉर्प्शन ऑफ, शिवानी बहन इसको कहती है सॉरो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करती है सॉरो को आत्मा, जैसे उसी की प्यास है, उसे वही चाहिए। क्यों नहीं दे रहा है कोई? नहीं देता है तो बेचैन है। सारे लोग आके सुखी दे रहे, बस इंतजार था एक आके कुछ कहे, कोई कह दे बस तुम ठीक नहीं हो, बस पकड़ लिया। 100 लोगों ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, भगवान ने आकर कहा था कि तुमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं, वो सब एक तरफ रह गया। पकड़ किसको लिया? दुख को। कैसी विडंबना है ये, दुख से कैसा ये प्यार है आत्मा को। है प्यार आत्मा को, ये अद्भुत स्वभाव है आत्मा का, इसी को समझना है। ये समझना और इससे मुक्त होना, ये भाव होना भी मनमत है और परमत है, ये श्रीमत नहीं है। अपने आप को हम अगर कहे कि ये ह्यूमिलिटी है, ये विनम्रता है, और बाबा तो कहता है निरंकारी बनो, हम तो अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहे। अपने वो तो कह रहा है समझो, हम उससे स्वयं को निगेटिव में जा रहे हैं, माइनस में है चार्ट। तो इस न्यूनगंडता, इस इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इस हीन भावना से भी अरुणा सिस्टर क्या होना है? स्वयं को मुक्त करना है, ना तो अहंकारी और ना तो हीनता। हमारा क्या है? समान, मैं संसार की महान आत्मा हूं, इसमें अहंकार नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के तल पर कहा जा रहा है, देह के तल पर नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी, ये तो समान नहीं है, ये समान है ही नहीं है, ये हीन भावना है, इन्फियोरिटी है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, ये स्वयं स्वयं का ही शिकार करना। एक है वो निरंकारिता है, वो समान, वो दूसरी बात है। इन दोनों को इसके लिए मिक्स नहीं करना, निरंकारिता और न्यूनगंडता, हीन भावना, स्वयं स्वयं का शिकार करना। शिकार किया जाता है ना, तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ाया जाता है और तीर छोड़ा जाता है, ठीक है, वो तीर बाहर ही जाता है, पर ये जो तीर है उल्टा पकड़ा हुआ है। ऐसा किसने पकड़ा है? दूसरे ने नहीं, हमने ही तीर कमान को उल्टा पकड़ा है। तीर हमारी तरफ है, प्रत्यंचा उस तरफ है, और छोड़ने वाला भी कौन है? हम ही है। और कहां धस रहा है वो? इधर अपने ही हृदय में, और तब तक शांति नहीं है जब तक खून नहीं आता है। खून आएगा तो फिर अच्छा लगता है। हाँ, वो भी इच्छा नहीं है कि कोई पूछे, वो इधर घुसना चाहिए दिल में और खून आए। ये एक ऐसा अद्भुत मनोविज्ञान है, इसको मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा कोई सोचता है? हम किसी मरीज को देखने जाते हैं, हमें बहुत दुख है, परंतु क्या एक भाव अपने अंदर भी रहता है कि अंदर में खुशी भी है कि मैं बीमार नहीं पड़ा? एक कोई मर गया है, हम शव यात्रा में जा रहे हैं, एक खुशी अंदर है मनुष्य के मन में, वो कभी नहीं मानेगा कि है। क्या? मैं जिंदा हूं, ये मर गया है। किसी को बहुत अच्छी प्रगति हो रही है और सफलता मिली है। हम ऊपर से कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमारे ही अंदर ईर्ष्या बैठी हुई है। क्यों मिली? नहीं मिलनी चाहिए थी। मन के इतने सूक्ष्म भाव है कि इनको पकड़ लेना, पहले तो मनुष्य मानता ही नहीं कभी। कभी एक माँ कभी मानेगी? घर में जब बेटी जन्म लेती है और बेटी जब जवान होती है और सारा ध्यान सबका उस बेटी की तरफ जाता है, माँ ये कभी नहीं मानती। माँ तो ऊपर से दिखाती कि उसको बहुत खुशी होती कि सभी का ध्यान मेरी बेटी की तरफ जा रहा है और सभी बेटी की तारीफ कर रही। अंदर में सूक्ष्म ये भी भाव रहता है कि मेरे तरफ सबका ध्यान अब कम हो गया है। कोई मानेगी माँ? कभी नहीं। परंतु मनोविज्ञान कहता है ऐसा है। जैसे ये सारी बातें हैं, उसी तरह प्रेम है दुख से। इतना सूक्ष्म है ये, इतना सूक्ष्म है कि जो प्यार कर रहा है दुख से, उसे भी नहीं पता कि वो दुख से प्यार कर रहा है। वो तो कहता है, हमेशा ही सभाओं में प्रश्न पूछता है, दुख से छूटने के मार्ग बताओ। ढूंढते हैं सारी वो किताबें जिससे दुख से मुक्ति हो, परंतु अंदर ही प्यार बना हुआ है दुख से। मुक्ति का मार्ग ये जानना ही मुक्ति है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, कोई और मार्ग नहीं है। संपूर्ण समझ ही संपूर्ण मुक्ति है। समझ लिया मुक्त हो गए। समझ लिया ये जो है सर्प नहीं, ये रस्सी है। सर्प नहीं रज्जू है, रस्सी है, बस मुक्ति हो गई। फिर भय कैसा? क्यों भागे? वो सर्प है ही नहीं, वो सांप है ही नहीं, उससे भागना भी क्यों और तलवार से लड़ना भी क्यों? वो तो रस्सी है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण कोई बात को भागना नहीं है किसी भी बात से। आंख में आंख डालकर देखो उससे, तो वो नष्ट हो जाएगी। वो है ही नहीं, क्योंकि ये कब तक अंधकार से भागते रहोगे कि अंधकार है हम तो नहीं जाएंगे, भागो। भागने से अंधकार मिटेगा नहीं? चलो अंधकार से लड़ाई करेंगे, 10,000 की सेना लेके तलवार लेकर इस अंधकार को इस कमरे से बाहर भगाएंगे। जीत सकोगे? नहीं जीत सकेगी, क्योंकि अंधकार है ही नहीं। प्रकाश को खड़ा करो, प्रकाश जाए अंधकार विलीन हो जाएगा। उसी तरह समझ ही प्रकाश है, अंडरस्टैंडिंग ही प्रकाश है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जहां प्रकाश आ जाएगा अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाएगा। पवित्रता ही प्रकाश है। जहां पवित्रता आ जाएगी फिर काम विकार से युद्ध करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वस्वरूप में आत्मा स्थित है वो कि संपूर्ण पवित्र है। ओम शांति।
प्रश्न उत्तर आए कि तबीयत तो नहीं खराब हुई? नहीं नहीं।